नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। 2024 चुनावी साल है। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, और जिसकी चल रही होती है समय उसे कब चलता कर दे किसी को नहीं पता। इसीलिए सदियों से यही चलन चला आ रहा है कि किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि समय सबके साथ न्याय करता है। वो अहंकार का अंत और गुरूर का नाश कर देता है। इसलिए हर चुनाव के समय नई उम्मीद बनी रहनी चाहिए। जरा याद करें वाजपेयी सरकार के समय को, तब शाइनिंग इंडिया का हल्ला था। एनडीए 335 सीटें जीतने का दावा करती नहीं थकती थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो थकी हारी किसी तरह 138 सीटों तक ही सिमट गई। और आज ठीक 20 साल बाद नरेंद्र मोदी की कमान में अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है देश को विकसित भारत बनाने का। यानी 2004 की तरह 2024 में भी सब कुछ हवा हवाई। लेकिन ये कितना कामयाब होगा, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। इसीलिए कॉलम अपन तो कहेंगे में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है, उम्मीद रखें, समय आ रहा है। यों रावण ने भी राम को थका दिया था, वह अजय भाग्य जो पाए हुए था, लेकिन समय के आगे भला अहंकार कितना दीर्घायु होगा। इस सत्य को मैंने बतौर पत्रकार 12 प्रधानमंत्रियों के आने जाने के अनुभव में बारीकी से बूझा है। इसलिए न तो समय पर अविश्वास करना चाहिए और न उम्मीद छोड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल, यह नहीं तो वह, और यदि कोई नहीं तब भी परिवर्तन में ही अवसर है। इसलिए मैं राष्ट्र राज्य के हर चुनाव के समय नई उम्मीद में रहा, और बार बार निराशा के बावजूद मैंने इस विश्वास को बनाए रखा कि इस बुरे अहंकारी समय को भी समय मिटा देगा। मेरा एक अनुभव अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शाइनिंग इंडिया का था। ध्यान रहे, वाजपेयी कैबिनेट में सत्ता का गुरूर कम नहीं था। खासकर ब्रजेश मिश्र, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू एंड पार्टी में। तभी इन्होंने इंडिया को चमका मानकर 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव कराया था। उससे पहले प्रदेश विधानसभाओं में भाजपा भारी मतों से जीती थी। सो लोकसभा चुनाव के सिनेरियो में तब जन सर्वे एनडीए को 335 सीट मिलने की हवाबाजी करते हुए था। लेकिन हुआ क्या, 2004 के चुनाव में भाजपा 138 सीटों पर सिमटी और सोनिया गांधी की कांग्रेस ने 145 सीटें जीतकर यूपीए की सरकार बना दी। ठीक 20 साल बाद अब कथित विश्वगुरु नरेंद्र मोदी की चकाचौंध में भारत वोट डालता हुआ है। लेकिन पहले शाइनिंग इंडिया के चुनाव पर बात करें। तब मैं दैनिक भास्कर अखबार में रोजाना चुनावी विश्लेषण और पंजाब केसरी में साप्ताहिक गपशप कॉलम लिखता था, और मैंने माहौल बूझा और समय को बदलता लिखा। मुझे शाइनिंग इंडिया नजर नहीं आया, सो भाजपा की जीत के अवसर नहीं, और वही हुआ। याद करें, बिना विपक्ष के वाजपेयी राज की वह कैसी अप्रत्याशित हार थी। सोनिया गांधी और तब की कांग्रेस में उतना भी दम नहीं था जितना आज है। आखिर इस चुनाव में तो राहुल प्रियंका दबाकर भाषण कर रहे हैं, जबकि तब सोनिया गांधी के लिए हिंदी उच्चारण भी मुश्किल था। वाजपेयी के तब लोग भक्त थे, सोनिया गांधी के नहीं। संयोग है कि तब भी मतदान के चरणों में कम वोट से मतदाताओं के मूड को बूझकर मेरा पूछना था कि यह वोटिंग क्यों नहीं शाइनिंग वाली है। इसका अर्थ तो फिर शाइनिंग इंडिया फुस। हाँ, मेरा तर्क है, यदि कोई पार्टी या नेता एवरेस्ट पर बैठकर हल्ला बनाए, वह शाइनिंग इंडिया या अच्छे दिनों या विकसित भारत 400 सीटों का कानफोड़ू हल्ला करे, तो उसी अनुपात में यदि लोगों का उत्साह मतदान में नहीं दिखा तो सत्ताधारी पार्टी का बाजा बजा। वाजपेयी सरकार ने शाइनिंग इंडिया की अखिल भारतीय गूंज बनवाई थी। दिल्ली मीडिया में नैरेटिव बनाया था तो हिसाब से लोगों को उत्साह में झूमते हुए 1999 के मुकाबले में अधिक मतदान करना था, लेकिन लोगों ने कम वोट डाले। 58.3% मतदान हुआ, मतलब 1999 के मुकाबले में 1.7% वोट कम, और परिणाम में भाजपा 135 सीटों पर सिमटी। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कोई पक्की थ्योरी है कि मतदान कम हुआ तो सत्ताधारी पार्टी हारी। जब चुनाव रूटीन का हो, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों सामान्य ढंग बिना हवाबाजी के लड़ रहे हों, तो कम मतदान सत्ताधारी पार्टी के लिए अनुकूल हो सकता है। लोगों के यथास्थिति वाले मूड में सत्ताधारी पार्टी की वापसी संभव है। लेकिन भारत के चुनावी इतिहास के विश्लेषण में ऐसी थ्योरी नहीं बनती। गौर करें सन 1957 से 2019 के 16 चुनाव के वोट टर्नआउट और नतीजों पर। 10 बार वोटिंग बढ़ी तो उसमें 6 बार सत्ताधारी दल जिसमें नेहरू इंदिरा मोदी की वापसी हुई और 6 दफा मतदान कम हुआ तो 4 बार विपक्षी पार्टी की सरकार बनी। 1977 में बनी जनता पार्टी सरकार ने निराश किया। नतीजतन 1980 में लोगों का कम मतदान हुआ और इंदिरा गांधी की वापसी हुई। वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकारों के खराब प्रदर्शन के बाद 1991 का चुनाव हुआ तो लोग निराश हताश थे। चुनाव में अधबीच राजीव गांधी की हत्या हुई तो बाद के चरण में कुछ मतदान बढ़ा, लेकिन कुल मतदान 56.7% यानी कम ही था, जो पिछले चुनाव जिसमें वीपी सिंह ने माहौल बनाया था उससे 5.2% कम था। कम मतदान से तब कांग्रेस के निराकार पीवी नरसिंह राव की किस्मत चमकी। वे प्रधानमंत्री बने, फिर वाजपेयी सरकार का उदाहरण है। उनके 1999 के चुनाव में मतदान पिछले चुनाव जिससे वाजपेयी की 13 महीने की सरकार बनी थी उससे कोई 2% कम 60% था। पर वह चुनाव क्योंकि 13 महीने की सरकार के घटनाक्रम में वाजपेयी के प्रति सहानुभूति के साथ था तो कम मतदान में भी लोगों द्वारा तब यथास्थिति बनाए रखना था। लेकिन 5 साल बाद कम मतदान से वही वाजपेयी सरकार अप्रत्याशित रूप से हारी। इस बैकग्राउंड में नरेंद्र मोदी के 2014, 2019 और 2024 के मौजूदा चुनाव पर गौर करें तो क्या हाईलाइट है। वे उत्तरोत्तर बढ़ती आंधी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के तीनों चुनाव एवरेस्ट पीच पर नगाड़े बजवाते हुए लड़े, मतलब अच्छे दिनों का 15 लाख रुपए हर परिवार को बांटने का, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने का और भारत को विश्वगुरु विकसित बनाने के विशाल प्रोपेगेंडा के साथ वे एवरेस्ट पर बैठे चक्रवर्ती राजा की तरह वोट मांगते आए और मांग रहे हैं। इसी अनुपात के तूफानी जोश से लोगों ने 2014 में रिकॉर्ड वोट 66.6%, 2009 के मुकाबले 8.23% ज्यादा, 2019 में नए रिकॉर्ड 67.40%, यानी 2014 के मुकाबले 0.96% ज्यादा वोट डाले गए। इस हकीकत में 2024 के मौजूदा 400 पार के हुंकारे में वोटिंग उत्साह से अधिक होते हुए क्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उल्टे मोदी के जादू के कोर इलाकों में भी मतदान घटता हुआ है तो इसका क्या वही अर्थ नहीं जो वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया के चुनाव का था। वाजपेयी की शाइनिंग टीम का 335 सीटों का हल्ला था, वही मोदी का 400 पार का आंकड़ा है, तो जाहिर है शोर के अनुपात में पहले तो वोटिंग बढ़नी चाहिए और यदि वैसा नहीं हुआ तब भी मोदी के लिए कम से कम 2014 जितनी वोटिंग तो हो। कुल मतदान का आंकड़ा ओवरऑल या कि मैक्रो लेवल का पहलू है, लेकिन इस चुनाव में ज्यादा चौंकाने वाली बात नीचे सीटवार लड़ाई या कि माइक्रो लेवल की वोटिंग है, जहां भी भाजपा के सिटिंग सांसद को नए अनाम या बड़ी हैसियत के चेहरे से जहां भी शोर के साथ टक्कर मिली है वहां ज्यादा वोटिंग है। दूसरा ट्रेंड है कि विपक्षी सत्ताधारी प्रदेशों में ज्यादा मतदान और नरेंद्र मोदी के जादुई इलाकों में कम मतदान। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान हो गया है। इसके वोट आंकड़ों में अधिकतम मतदान बाड़मेर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा जैसी उन सीटों पर है जहां भाजपा विरोधी रविंद्र भाटी, राजकुमार रोत, प्रहलाद गुंजल, राहुल कासवाम, कुलदीप इंदौरा जैसे विरोधी उम्मीदवारों की मेहनत दबंगी से उनका नैरेटिव बना और वहां मतदान भी ज्यादा हुआ। लब्बोलवाब में मतदान के 2 चरणों के संकेत हैं। भाजपा के सिटिंग सांसदों के खिलाफ नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी भारी है। दूसरा, भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में पहले जैसे एक्टिव नहीं है। तीसरा, चुनावी सीट पर स्थानीय जोश और मोदी का माहौल बनवाती भाजपा मशीनरी नहीं है। चौथा, अधिकांश सीटों पर जात पात में वोट पड़ते हुए है। पांचवा, जातीय समीकरण में भाजपा का उम्मीदवार अपनी जाति में ही अधिक वोट ले पा रहा है। 2019 जैसा सर्वजनीय माहौल नहीं है। छठा, मोदी का नाम है पर उनका चेहरा अब लोगों से स्वस्फूर्त वोट डलवाने वाला चुंबक नहीं रहा। लोग मोदी भक्त हैं लेकिन बाकी सब कुछ भूलकर वोट डालने का वह जोश कतई नहीं जो 2014 व 2019 में था। सातवां, दलित, आदिवासी, ओबीसी, जातियों, राजपूत और सीट पर उम्मीदवार अनुसार फॉरवर्ड जातियों में निराशा, हताशा, संविधान, आरक्षण, नौकरी, महंगाई जैसे वे मुद्दे हैं जिनसे मोदी का वोट पहले जैसा एकजुट नहीं है, वह बिखरा छितरा है। आठवां, चुनाव के फीके उदासीन माहौल में लोग अपनी चिंता मूड और सरोकारों में हैं, न कि नरेंद्र मोदी को वोट डालकर जिताने की चिंता में। तभी मोदी बनाम बेफिक्र उदासीन लोगों व समुदायों के बीच का ठंडा चुनाव है। इसमें कांग्रेस या विपक्ष बेमतलब है, चुनाव मोदी बनाम लोगों में है। आखिरी बिंदु 2024 के चुनाव में निर्णायक साबित होगा। इसका संकेत राजस्थान में हुआ मतदान है। 2014 और 2019 में मोदी ने 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस दफा कम से कम 4-5 सीट भाजपा के हाथ से निकल रही है। और मेरी यह कसौटी है कि यदि लाखों के अंतर से जीतने वाली सीटों के प्रदेश राजस्थान में भाजपा 4 सीट भी हारती है, तो उस उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा, जहां 2019 में भाजपा ने कोई 11 सीटें 5% से भी कम वोटों से जीती थी, वहीं 15 सीटें 5-10% वोटों के अंतर से जीती थी। जबकि इस चुनाव में मुसलमानों का कंफ्यूजन दूर है, पहले की तरह बसपा ओवैसी का वोट कटवा रोल नहीं होगा। फिर दलित और आदिवासी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बांसवाड़ा, मंडला, झाबुआ, छिंदवाड़ा, करौली, बस्तर जैसी सीटों पर कम या अधिक मतदान में भाजपा के लिए मुसीबत है, तो इन प्रदेशों से कई गुना अधिक जातिवादी प्रदेश यूपी, बिहार, झारखंड में क्या होगा? क्या यूपी में भाजपा 64 सीटें वापस जीत लेगी? लब्बोलुआब चावल का एक दाना 7 राउंड के चुनाव के पहले 2 राउंड वे संकेत दे रहे हैं जो 2004 में थे। तभी समय का कमाल देखें, जो 15 दिन में नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई। याद करें 2014 के नरेंद्र मोदी को, तब वे खुद हर हर मोदी लिए हुए थे और अब वे घर घर राहुल गांधी को पहुंचा रहे हैं। मरी हुई कांग्रेस को जिंदा कर दिया है। दिन रात मुसलमान के नेगेटिव प्रचार का रोना धोना है। न अब की बार 400 पार का नारा गूंज रहा है, न भाषण में मोदी की गारंटी है। अब तो वे अपने मोदी की गारंटी या मैं और भाजपा का नाम छोड़कर बोलने लगे हैं कि एनडीए आएगी तो एनडीए यह करेगी वह करेगी। वे छत्तीसगढ़ में रात गुजार रहे हैं तो अमित शाह भोपाल के ताज होटल में रात गुजारते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को हड़का रहे हैं। तो राजगढ़ की बिगड़ी सीट को सुधारने के लिए दिग्विजय सिंह के हाथ जाने को मजबूर हैं। सोचें, उस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मोदी शाह का 2-4 सीट गंवाने की चिंता में रात में सोना नहीं, जहां 15 दिन पहले तक भाजपा द्वारा एक भी सीट गंवाने का दूर दूर तक अनुमान नहीं था। सो उम्मीद रखिए और मानिए, समय बलवान है। याद है ना, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।